जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग चैतन्य चरतामृत के अध्याय 23 के 31 मध्य लीला के अध्याय 23 को पढ़ रहे हैं। भगवत प्रेम का वर्णन हो रहा है, जीवन के परम प्रयोजन, और इसमें 71वें श्लोक से आगे हम देख रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न गुणों का वर्णन हो रहा है। कौन बोल रहा है मेरे पीछे? विविधाद्भुत भाष विविधाद्भुत भाषावेत सत्य प्राप्त, नहीं संस्कृत है, विविधाद्भुत भाषावेत
विविधाद्भुत भाषावे
सत्यवाक्य प्रियं वदह
सत्यवाक्य प्रियं वदह
वावदुक्सु पांडित्यो
वावदुक्सु पांडित्यो
बुद्धिमान प्रतिभान्विता
बुद्धिमान प्रतिभान्विता।
कृष्ण सारी अद्भुत भाषाओं के वेत्ता हैं, वे सत्यवादी तथा मधुर भाषी हैं। वे बोलने में चतुर यानी वाक्पटु हैं और अत्यंत बुद्धिमान विद्वान तथा प्रतिभावान हैं। विविध अद्भुत भाषाविद, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है भगवान अनेक प्रकार की भाषाओं को जानते हैं, यहां तक कि पक्षियों की भाषा को भी जानते हैं। ओह अद्भुत कृष्णा, यू लुक वेल टुडे, नाइस टू सी यू हियर। ओके वन सेकेंड, सो विविध अद्भुत भाषाविद, इसका मतलब अंग्रेजी भी जानते होंगे, बांग्ला जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, जो भी भाषा में आप प्रार्थना करोगे तेलुगु तमिल सब जानते हैं, जो भी अद्भुत भाषा है। तो किसी भी भाषा में भगवान को एड्रेस किया जाता, महाराज बोल रहे थे, शायद उर्दू नहीं जानते लेकिन उर्दू भी जानते हैं, सब जानते हैं, अवधी सब सब जानते हैं, सब भाषा उन्हीं से आ रही। भाई जो उर्दू बोल रहा है उस उर्दू का ज्ञान भी तो भगवान से ही आ रहा है। महाराज वाली विनोद में बोल रहे थे, मोहन सब जानते हैं। तो अर्ज किया है, हे भगवान अर्ज किया है अगर आप ये भी बोलेंगे तो भी चलेगा, नथिंग आई थिंक, तकल्लुफ देना चाहेंगे आपको सो वो भी स्वीकार करने की कोई दिक्कत नहीं, नथिंग अगेंस्ट उर्दू, उर्दू हो कोई भाषा, भगवान सभी के भगवान है, इंग्लिश है सब सुन लेंगे। सत्यवाक्य हाँ प्रियम वदह, सत्यवाक भगवान जो बोलते हैं वो सत्य है। सत्यव्रतम वाले श्लोक पे हम भागवत में सुन चुके हैं, जो भगवान बोलते हैं वो सब कुछ सत्य है। सत्य संकल्प भी है, जो बोल देंगे वो होगा ही, वो तो उनके भक्तों में गुण होता है तो भगवान में तो होगा ही। और प्रियम वदह, ये बड़ा सुंदर बात है, देखिए ये दोनों गुण को समन्वय करना मुश्किल होता है। पहले तो सत्य हम बोल ही नहीं पाते हैं, अच्छा बोलना चाहे तब भी बहुत बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि सत्य क्या है ये पता नहीं है। और मान लो पता हो तो व्यक्ति बोलता है तो हो सकता है सामने वाले को कड़वा लग जाए बहुत। तो भगवान इस प्रकार से हैं, सत्य बोल रहे हैं और प्रिय बोल रहे हैं। देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, भगवान गीता में कैसे बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है अब तुम जो चाहे वो करो, काफी अच्छा है, काफी इंटरेस्टिंग है, ये तो सुनना चाहता है जीव कि नहीं। लेकिन प्रियम वदा बहुत मधुर बोलते हैं, क्या मधुरया गिरा वल्गु वाक्य, गोपियां भी स्मरण कैसे कर रही है, मधुर वचन बोलते हैं कृष्ण, उनकी स्मित मुस्कान ही जीत लेने वाली है, और वाणी का तो कहना ही क्या, कितना अर्जुन को मतलब प्रेम में संबंध में बोलते होंगे कृष्ण, तो सोचने वाली बात। लेकिन ये श्लोक कितना सुंदर है ना, कौन्तेया प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। देखिए भगवान कृष्ण इस बात को बोल रहे हैं, कितना प्रेरणादायक है ना, सत्य तो है ही लेकिन कितना प्रिय लगता है ना, कौन्तेया प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी नाश नहीं होता। ये इस तरह की बात की, यान्ति देवता देवान पितृ यान्ति पितृवतः भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मद याजिनोपि माम, जो मेरा पूजन करते हैं वो मेरे पास आते हैं। और इसमें भी कितनी प्रेता सूचित हो रही ना, ये नहीं कह रहे कि मेरे पास आते हैं मतलब मेरी पूजा करते हैं तो कृष्ण लोक में चले जाते हैं, वो भी कुछ अलग लगेगा, कृष्ण मेरी पूजा करते हैं तो मेरे पास आते हैं, एक विशेष प्रेम सूचित हो रहा है ना, मेरे पास रहेंगे इत्यादि। अभी देख सकते हैं भगवान के स्पेशल गुण है, वावु दुख का अर्थ यहाँ पे क्या, ये सही लिखा है क्या, वावु दुख, वावु दुख बोलने में वाक्पटु, ये तो आप टीकाओं से समझ सकते हैं, जब भगवान कृष्ण गोपियों से बातचीत कर रहे हैं उसे कई अर्थ लेते हैं, एक अर्थ होता है यहाँ पर रहो, दूसरा बाहर से रहो, यथाश्वत अर्थ है कि चली जाओ, ऐसे अर्थ नहीं यहीं रहो क्या दिक्कत है, ऐसे करके आप सुन बहुत बार सुने, मतलब पढ़े तो नहीं होंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा सुने हैं, महाराज लोगों से सुने हैं, अन्यथा भी आप महाराज भगवान के शब्द जो है उसके कई अर्थ होते हैं। जय विजय के केस में भी हाँ भगवान कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। चार कुमार जो अत्यंत बुद्धिमान है कि ये ऐसे कह रहे हैं कि देखिए हे ब्राह्मणों, मेरा हाथ भी अगर ब्राह्मणों का अपराध करता है तो मैं अपने हाथ को काटने में संकोच नहीं करूंगा। तो वो अपने हाथ की उपमा किसे दे रहे हैं? अपने सेवकों से दे रहे हैं। तो अब ये जो चार कुमार है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अपना तो दिखा रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, अपने सेवकों के प्रति, तो हमने तो इनके इतने प्रिय सेवकों का अपराध किया है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको डांट रहे हैं कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। और ऐसे ही क्या नाम से जब ब्रह्मा जी से पूछते हैं, चार कुमार प्रश्न करते हैं, तो ब्रह्मा जी कि भाई ये इंद्रियों के विषय हमेशा मन में प्रवेश करते हैं और मन हमेशा इंद्रिय विषयों में प्रवेश करता है, इनको अलग कैसे किया जाए? तो ब्रह्मा जी समय सृष्टि का कार्य कर रहे होंगे, मैनेजमेंट में वो समझ नहीं पाए कि क्या उत्तर देना चाहिए। तो इतने में भगवान ध्यान करने लगे, भगवान का तो हंस अवतार प्रकट हो गए। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन, चार कुमारों ने पूछा आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि यदि आप ब्रह्म में निष्ठ हैं तो आपका ये प्रश्न गलत है कि मैं कौन और आप कौन, हम तो सब ब्रह्म ही है। और यदि आप ये कह रहे हो कि भेद देख रहे हैं तो आप मेरा शरीर तो, और आप मान रहे कि हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना है, तो आपको अभी प्रश्न भी प्रासंगिक नहीं है कि आप कहना चाहिए कि तुम पांच कौन, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो इसका लगता है मतलब ये होगा कि आपको प्रश्न करना नाता नहीं है। अरे चार कुमार जो है वो सोचने लगे, तो बोलने में भगवान बड़े बहुत मतलब चतुर है, और आप उधर भी देख लीजिए, तीन पग चाहिए मुझे, तीन पग बाली महाराज को बोल रहे हैं। और बाली महाराज कह रहे हैं आपके पास बुद्धि नहीं है, आप क्या तीन पग मांग रहे हैं? तो कह रहे भाई, फिर देखो वहां पे भी वहां टॉन्ट करते हैं, अरे भाई जो व्यक्ति तीन पग से संतुष्ट नहीं हो सकता वह तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। उसी को बोल रहे हैं तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करके भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तो इस प्रकार से भगवान बोलने बहुत चतुर है, सुपांडित्य, और शास्त्रानुसार बोलते हैं। भगवान गीता में 13वें अध्याय में बोल रहे हैं, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर्व निश्चित, बात सब बोल रहे हैं अब क्षेत्र क्षेत्र के, फिर भी ब्रह्म सूत्र कह रहे हैं, ब्रह्म सूत्र को कोट कर रहे हैं, सारे शास्त्रों में से ही आए हैं लेकिन पंडित में भी एक्सपर्ट है। देखिए सोचने वाली बात है, 15-45 मिनट लगा होगा मैक्सिमम, 1 घंटा लगा होगा बोलने में गीता, और विश्व का सबसे उच्चतर कोटि का फिलोसफी का दार्शनिक ग्रंथ है। तब समझ लीजिए भगवान कितने बड़े पंडित है। चीज है बुद्धिमान प्रतिभान्वित, बुद्धिमान तो समझ में आ रहा है, प्रतिभान्वित अच्छा, प्रतिभान्वित मतलब प्रतिभावान, प्रतिभान्वित प्रतिभाओं से युक्त है भगवान। तो हमारे भगवान बड़े अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी की पूजा कर रहे हैं, इनके चरणों में प्रेम प्राप्त करना जीवन का अच्छा परम लक्ष्य है, क्लियर समझ में आ रहा है इनके साथ है कौन। ठीक है, विदग्ध चतुरो दक्ष,
विदग्ध चतुरो दक्ष,
कृतज्ञ सुदृढ़ व्रत,
कृतज्ञ सुदृढ़ व्रत,
देश काल सुपात्रज्ञ,
देश काल सुपात्रज्ञ,
शास्त्र शास्त्र चक्षु शुचिर वशी,
शास्त्र चक्षुर शुचिर वशी।
कृष्ण कलात्मक भोग में अत्यंत पटु हैं, वे अत्यंत चतुर दक्ष कृतज्ञ तथा अपने व्रत पर दृढ़ रहने वाले हैं। वे देश काल तथा पात्र के अनुसार आचरण करना जानते हैं और शास्त्रों तथा प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं। वे अत्यंत पवित्र तथा आत्मसंयमी हैं। इन पर कुछ विचार कर सकते हैं गुणों के ऊपर। विदग्ध कलात्मक आनंद आस्वादन में दक्ष, इसका एक एक तो बात समझ में आ रही है, जो गोपियों के संग भगवान रासलीला करते हैं उसमें भगवान बहुत दक्ष है, इसलिए विदग्ध माधव कहा जाता है। और भी भगवान की लीलाएं हैं जिसमें भगवान बड़े चतुर, बहुत ही एक्सपर्ट हैं उसको आस्वादन करने में, चाहे वो दास्य की हो, चाहे साक्य की, वासल इत्यादि की भी। चतुर चतुर चतुराई का, हाँ चतुराई का आप देखिए वो एग्जाम्पल जो आपको जानते हैं, अर्जुन, और अर्जुन को बोला था ना कि पांच बाण, भीष्म देव ने कहा कि पांच बाण जो है मैं ले रहा हूं, उससे अब कल पांडव को मार दूंगा मैं। फिर भगवान ने चतुराई करके जाओ पांच बाण मांग के लेके आ जाओ, चतुराई तो है ही कृष्ण की। दक्ष दक्ष देखिए चतुराई और दक्ष में अंतर है। चतुराई आप जैसे एग्जाम्पल लिए, दक्ष का मतलब है कोई भी कार्य करने में एक्सपर्ट, और आप जानते हैं 64 दिन में भगवान 64 कला सीख गए, सीख क्या के सारा उन्हीं से आ रहा है, लेकिन मतलब उसमें एक्सपर्ट है करने में। दक्ष दक्ष और चतुर में अंतर समझ रहे ना भाई, जैसे मान लीजिए आप मृदंग अच्छे से बजा रहे तो उसको चतुराई नहीं कहा जाएगा, दक्षता कहा जाएगा। कोई भी कार्य को अच्छे से करने को दक्षता कहा जाता है। उसमें थोड़ा बहुत चतुराई भी आ जाएगी, लेकिन कहेंगे चतुराई करने में दक्ष, लेकिन बेसिकली दक्ष मीन्स एक्सपर्ट इन डूइंग थिंग्स। और कृतज्ञ है बहुत शब्द सुंदर है। देखिए कृतज्ञता का गुण भक्तों को बहुत प्रेरित करता है। क्यों? जो कुछ भी भगवान का भक्त भगवान के लिए करता है इस जीवन में, छोटी से छोटी चीज भगवान उसको बहुत बड़ा करके मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कौशिक जी देख लीजिए, कौशिक जी हमारे पड़ोस वाले जिनका वर्णन भागवत में, तो कौशिक जी ने जल दिया भगवान को और भगवान ने उनको इंद्रपद दे दिया। आप जानते हो जो पांच गीता के श्लोक 18वें अध्याय के हिडन श्लोकास, पांच गीता के श्लोक पढ़ लिए और उसको इंद्र बना दिया, और जब तक चाहे तब तक इंद्र बने। ये बात ना लोगों को हजम नहीं होती, ये एक ही नाम से सारे जन्मों के पाप कैसे नष्ट हो जाएगा? आप सच्ची बताओ, को विश्वास है इस बात पे? सच्ची सच्ची बोलेंगे तो नहीं विश्वास होता है, अरे कैसे एक नाम से कैसे हो जाएगा साहब? शास्त्र बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता लोग, अरे एक नाम से। महाराज बोलते भक्तों को भी संदेह रहता है इसमें, भगवान ऐसा करते भी कि देखो पाप की प्रवृत्ति तुरंत एक्चुअली नष्ट हो जाती है लेकिन बनी रहती है। अपने जीवन में भी देखता भाई कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है, क्या चक्कर है? और उधर शास्त्र में लिखा एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अजामिल को भी उससे कुछ लगता रहा नहीं था। युक्ति आप लगाते हो लेकिन फिर भी अजीब सा लगता है ना, एक और इतना कृपा करना, इतने घोर से घोर पापी व्यक्ति को भी एक नाम उच्चारण कर देने से उद्धार कर देना, कृतज्ञता ही तो मानी जाएगी ना। अरे एक भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, आज हम लोग खूब दबा के खिचड़ी बिचड़ी खाए जो रोजी खाते हैं, उसमें क्या है? खिचड़ी चिक्की बिकी, अब दिख रहा है उसमें करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का लाभ मिल रहा है, उसमें है बिल्ट इन भगवान की। इसमें भागवत में लिखा हुआ है दीति के वाले प्रसंग में, एक दिन भी कोई सेवा करता है, एक दिन कोई पूजा करता है तो भगवान उसे अपना धाम देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं बड़ी आसानी से मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। अंजसा स्वर्गाप वर्ग मध्धाम मदभक्त लभते अंजसा, बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है, बस हम अपराध से बच जाए। अपराध बचाना बड़ा दिक्कत है, अपराध से बच जाए तो बहुत तेजी से भगवान के पास जा सकते हैं। एक्चुअली चक्रवर्ती पाद लिखते हैं एक बार बोले कि भगवान का नाम हो बस चला जाएगा, अगर अपराध से बचा रहे तो। अगर अपराध है तो फिर उसको प्रोसेस है धीरे धीरे करके बचना चाहिए। तो कृतज्ञता का गुण समझ ही रहे हैं आप। आप एक और गुण समझ लीजिए कृतज्ञता में, जैसे आप देखिए द्विविध गोरिल्ला के बारे में हम बता चुके हैं। द्विविध ने इतना परेशान किया था भगवान के समय में, दक्ष द्वापर युग में, लेकिन क्योंकि राम भगवान के रूप में जब आए थे सेवा किया था तो उसको याद रख रहे थे भगवान, इसलिए मार नहीं रहे थे उसको। बहुत ज्यादा बदतमीजी की, उसके नाम वर्णन नहीं कर सकते बदतमीजी का, बहुत भागवत में इसका है, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। अंत तो कहा फिर बलराम जी मारे उसको। और ये भी हम सब सुनते ही हो कि देवकी और वसुदेव के प्रति जरा सा भी प्रेम कंस दिखा दिया होता तो बिल्कुल भगवान नहीं मारते उसको। और उस वक्त भी जब उसने बोला कि अब इस वसुदेव को मार दो, देवकी को मार दो और अन्न को मार दो, तब भगवान उसको मारे, नहीं तो वहां भी नहीं मारते। भगवान बहुत मतलब सुशील स्वभाव के, ऐसे किसी को नहीं छोड़ देते, ऐसे क्या किसी को भी नहीं छोड़ते, मतलब छोड़ते तो किसी को भी नहीं है। और प्रैक्टिकल बात है कि कुछ भी हम अनादिकाल से कितना अपराध किए हैं फिर भी भगवान छोड़ तो नहीं रहे, ये बहुत अच्छा बात है। कृतज्ञ, हाँ द्रौपदी का केस आपने अच्छा दे रहा। द्रौपदी एक बार भगवान हस्तिनापुर में थे और कुछ फल काट रहे थे, महाभारत में पढ़ रहा था, बहुत अच्छा घटना। तो फल काटते काटते उनका चक्कू उनके हाथ में लग गया और उनके हाथ से खून निकलने लगा, तो तुरंत द्रौपदी माता अपने साड़ी की परवाह नहीं की, उसका पल्लू फाड़ करके उसको बांध दी। तो भगवान बोले कि सखी मैं एक दिन इसका आपको मतलब प्रतिदान करूंगा। तो इस प्रकार से देखिए भगवान की रक्षा करते। तो ये मतलब ये समझ में नहीं आता व्यक्ति कि हम हमने इतनी छोटी सी कार्य किया है, भगवान उसका क्या करने वाले हैं। अभी दीपदान को देख लीजिए कार्तिक में, न सिर्फ हमारा उद्धार करेंगे कृष्ण, हमारे सारे पूर्वजों का उद्धार कर देते। इसीलिए हमने उसे कंटिन्यू करने का प्रयास किया है कि भाई रोज ही करो। जब कार्तिक में भगवान इतना खुश हो रहे हैं दीपदान में, तो क्या अगले दिन के दुखी हो जाएंगे? अरे भाई ये तो कार्तिक में तो बहुत दे दिया, अब इसको ये रोज दीपदान कर रहा है तो बहुत देना पड़ जाएगा इसको, ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा सोचते हैं कि मैं कम कर रहा हूं अपने भक्तों के लिए। तो ये सब चीजें हैं, बड़ा अच्छा है। सुदामा को देख लीजिए, सुदामा ने सूखे चावल दिए, मतलब देखो बता तो है लेकिन उसे थोड़ा मनन करें तो भगवान के गुणों को हमारे हृदय में कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, तो भगवान की भक्ति करने पे हमें प्रेरणा मिलेगी। भगवान आप सभी जानते हैं भगवान क्यों चुप रह गए, कि भाई ये तो पूरी शक्ति लगा के चावल दे रहा है, मैं तो पूरी शक्ति लगा के सारे महल नहीं दे रहा हूं। क्या अद्भुत कृतज्ञता है। और अद्भुत बात है, पूरे 16 माला के छोड़िए, एक महामंत्र में एक नाम भी आपने सुना है, दैट इज ऑफेंसलेस चैंटिंग, उसमें तो कोई अपराध नहीं है, वो उसकी वजह से उसमें भी आपका जीवन सफल हो गया। मैंने पूर्ण प्रभु को पूछा क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं, तो कहते हैं उसी दिन कृष्ण उस व्यक्ति का नाम अपने डायरी में लिख देते हैं इस तरह से। और ये सत्य बात है, भगवान बोलते किसी ने कभी भी कैसे भी मेरा नाम उच्चारण किया है मैं उसके नाम को कभी नहीं बोलता, आदि पुराण की प्रत्यक्ष बात है, ऐसे कोई भावना भावना की बात नहीं है, हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए वो बस अब बात है कि भक्तों के प्रति अपराध करेगा तो फिर कृपा कम होती है या कम एकदम न्यूनतम हो जाती है, जो भी कुछ है, लेकिन जो महिमा है वो तो है ही ना, तो उसका लाभ उठाना चाहिए, अपराध से बचते भगवान की भक्ति करें। कृतज्ञता का गुण बहुत भगवान का सुंदर है। और सुदृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत नहीं सुदृढ़ व्रत, एक एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है जैसे नरसिंह देव ने कहा था, देवता लोग आए कंप्लेन करने के लिए, बड़ी हालत खराब हो गई है, तो ने कहा ठीक है हिरण्यकश्यप परेशान करता है, जब मेरे भक्त के प्रति अपराध करेगा तो मार दूंगा, तो मार ही दिए, जबकि प्रैक्टिकली सारी कंडीशन उसने कवर कर ली थी कि नहीं मारे जाएगा, मैं मार दी उसको, और एकदम एर का कटकर दिया था, जैसे कि बढ़ई फाड़ देता है घास को, ऐसे फाड़ के खत्म कर दिया। और कौन से दृढ़ व्रत के एग्जाम्पल आपको याद आ रहे हैं? कुंती महारानी का वह एग्जाम्पल था, मुझे याद आ रहा था कि कुंती महारानी को बोली कि आपके 5 लड़के वापस आएंगे, 5 लड़के वापस आए, और कहां पे बोले द्रौपदी को वचन तो दिए थे, हाँ, और दृढ़ व्रत और भी भगवान के, भगवान का संकल्प तो संकल्प सत्य संकल्प है ही, हमारी स्थिति देखिए कहीं कुछ बोलेंगे हाँ बस हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे 10 बजे तक, कह रहे सॉरी लेट हो गया, नींद लग गई, पेट खराब हो गया, क्या क्या, क्योंकि हम बहुत चीजों पर डिपेंडेंट है, लेकिन भगवान किसी पर निर्भर नहीं है, इसलिए जो कुछ चाहते हैं वो कर लेते हैं। हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है, जो उनकी संदीपनी मणि के बेटे थे, बेटा था वाली बेटा, उसको लाने का संकल्प लिए तो पूरा कर दी, कितना कितना क्या, यमराज के पास आना कहाँ कहाँ। अच्छा ये देख लीजिए, जब अर्जुन फंस गए थे उसमें ब्राह्मण वाले केस में, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब बच्चा हमारे भक्त को बचाना है, तो कहाँ, महाविष्णु के पास पहुंच गए भगवान। अच्छा उधर देख लीजिए, फिर अर्जुन को बचाना था महाभारत में, तो वो जो जयद्रथ वाला केस, भाई आज अर्जुन को जिताना है, संकल्प ले ले तो फिर जीतना है। और यह भी बड़ा प्रसिद्ध बात है, तो आप जानते हैं कि अर्जुन, जब अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए थे ना, तो सुना होगा आपने, धृतराष्ट्र पे गया था, दुर्योधन पे गया था, तो जब भगवान को सिलेक्ट कर लिया अर्जुन ने, दुर्योधन चला गया था, तो अर्जुन को बोले तो मूर्ख हो गया, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, सारथी के रूप में कार्य करूंगा, और तुमने मुझे क्यों चुना। तब अर्जुन ने भगवान को बोला कि भगवान मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दे दूं, और आप अगर मेरी तरफ रहेंगे तो मैं पूरे विश्व को जीत सकता हूँ। तो भगवान भी इस बात को बोले कि पूरा विश्व भी तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए, तुमको हरा नहीं सकता। तो भगवान इस प्रकार का संकल्प लेते हैं, तो भगवान के संकल्प कोई काट नहीं सकता। देश काल सुपात्रज्ञ, किस देश में, किस काल में और किसको क्या कहना है, क्या करना है, ये सब भगवान जानते हैं। केवल कहने की बात नहीं होती, देश के हिसाब से दान देना होता है, देश और काल के हिसाब से दान देना होता है, सुपात्र के हिसाब से दान देना, दान है और भी जो तपस्या है, किसी के संबंध में क्या बोलना है, सब भगवान उसमें एक्सपर्ट। गीता तो प्रत्यक्ष है ही कि देखिए 45-45 मिनट होगा, मैक्सिमम घंटा भर होगा, युद्ध का बीगल तो बज चुका है, उस स्थिति में एग्जैक्टली क्या बोलना है जिससे न सिर्फ उनके दोस्त का शोक दूर हो जाए, अपितु आगे सुनने वाले सभी लोगों का शोक दूर हो जाए, ये भगवान का कितना बड़ा एक्सपर्टाइज है, नहीं लगता आपको? सोचने वाली बात, भगवान कितना सोच के बोले हैं कि उनके मित्र को तो खैर शोक उन्होंने स्वयं ही जनित किया था, लेकिन उनके मित्र का भी शोक नष्ट हो गया, और आने वाले जितने लोग भी गीता सुनेंगे उन सब का शोक नष्ट हो जाएगा। शास्त्र चक्षु, ये बड़ा अच्छा शब्द है, शास्त्र चक्षु का अर्थ समझते हैं जो शास्त्र के अनुसार देखे। भाई जैसे कोई व्यक्ति एकादशी कर रहा है तो सामने वाला कहेगा फालतू सूख रहा है, मर रहा है, फालतू देखो हम अन्न खा रहे हैं, उसको ये नहीं दिख रहा है कि शास्त्र कह रहा है भाई इसमें तुम अन्न नहीं खा रहे हो, तुम गोमांस खा रहे हो, वो दिखता नहीं। आप लोगों को, जिन लोगों को शास्त्र का थोड़ा चक्षु हो गया है, उनको दिखने लगता है ये बात, ये दिखना कि भाई कोई मरा नहीं है, ना कोई मर रहा है ना कोई मार रहा है, केवल शरीर का परिवर्तन हो रहा है। तो ये सब दृष्टि शास्त्र देता है। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सुन लेगा तो व्यक्ति समझ में आ जाएगा, और उसमें भी जो सुना है उसको ठीक ठीक समझ में आना, उसको बोलना समझना, ये सब नहीं होता है लोगों में। भगवान तो खैर शास्त्र कृत है, सारे शास्त्र उन्हीं से आए हैं। तो यहां बोले शास्त्र चक्षु, शुचि पवित्र रहते हैं, और वशी मतलब अपनी इंद्रियों को सेवित करते हैं। अब कुछ दिनों में सुनने वाले हैं, मतलब कल सुनेंगे कि द्वारका की रानियां इतनी सुंदर थी कि कोई व्यक्ति उनके सौंदर्य के सामने ठहर नहीं सकता था, लेकिन भगवान के हृदय में कभी वो काम जागृत नहीं कर पाए। और इतनी सुंदर गोपियां, वो तो लक्ष्मी से भी सुंदर सुंदर गोपियां हैं, फिर भी भगवान के हृदय में काम जागृत नहीं कर पाए। अब कथा पता होगा आपको, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। गोपाल तापनी उपनिषद में एक बार गोपियों को यमुना क्रॉस करना था, पार जाना था, तो नई व्यवस्था होगी कैसे जाएं। तो कृष्ण के पास आए तो कहना, कृष्ण कहे कि यमुना को जाके बोल दो कृष्ण ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। तो गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई आप तो रासलीला करते हो, इतनी लड़कियों के संग रहते हैं, आप कैसे ब्रह्मचारी। फिर भी उन्हें विश्वास था, गई यमुना जी के पास, कही कृष्ण ब्रह्मचारी है, यमुना जी ने रास्ता दे दिया, क्रॉस कर गई। वहां दुर्वासा जी के आश्रम में जा रही थी उनको कुछ प्रसाद वगैरह देने के लिए, तो दुर्वासा जी के पास गई, उनको खिलाया, दुर्वासा जी जम के खाए लिए। उसके बाद तो कहले हम लौटे कैसे, यमुना जी तो फिर रास्ता नहीं देंगी। तो कहते हैं आप बोलो दुर्वासा दुर्भारी, दुर्वासा केवल घास खाते उनको ये पहले बोला कृष्ण ब्रह्मचारी, उसका बोल रहे दुर्वासा घास खाते, अभी तो दबा के अब खा रहे। तो उन्हें बोला दुर्वासा केवल घास खाते, यमुना जी ने रास्ता दे दिया और वापस आ गए। तो उसका आशय यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए यद्यपि कृष्ण गोपियों के संग है, उनके हृदय में कोई काम वासना नहीं, और उसी प्रकार से दुर्वासा खूब पुआ पकौड़ी खा रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में कोई खाने की इच्छा नहीं है, इस कारण से वो लिप्त नहीं है उसमें। तो ये बहुत बड़ी बात है, वशी कहना बहुत बड़ी बात। इंद्रिय संयम करना कठिन है, कठिन है, इसमें कोई हैंड्स रेज करना चाहेंगे? इंद्रिय संयम, उनको डाउट लग रहा है, पता ही नहीं कि क्या होता है, नहीं पता आपको इंद्रिय संयम करना, आंखें कम करना, बाकी लोग जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया सबकी इंद्रिय संयमित है। हाँ, तो वाणी को संयमित करना बहुत मुश्किल है, आंखों को और सबको बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तभी तो बोल रहे हैं कि क्या वो पूरे पृथ्वी में सबसे शिष्य, पूरे पृथ्वी को शिष्य बना सकता है जो व्यक्ति इंद्रिय को संयम कर ले। हाँ कृष्ण, पता नहीं कृष्ण ही है ब्रह्मचारी, ये तो मुझे नहीं पता, ऐसे कह रहे, लेकिन ये बोले कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी, ये बात बोल। ये भी बात है, भगवान का वीर कभी स्खलित नहीं हुआ, कभी स्खलित नहीं हुआ। फिर बच्चे कैसे हुए आप पता, भगवान तो आंखों से देख के बच्चे पैदा कर सकते। एक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था, ऐसे कैसे फिर संतान कैसे उत्पन्न हो गई, तो भगवान की सारी इंद्रिया हर तरह से कार्य करने में सक्षम है, वो तो देख के भी संतान उत्पत्ति कर सकते, वो तो क्या हाथ से प्रकट करते उसमें क्या। तो ये अद्भुत है, मतलब 16108 रानियां फिर भी ब्रह्मचारी रह गए, वो भी बहुत सुंदर ब्रह्मचारी, बहुत सुंदर स्त्रियां, मैं कह बोलना चाह रहा हूँ। तो भगवान कैसे गुण है,
स्थिरोदान्तः क्षमाशीलो
गंभीरो धृतिमान समः,
गंभीरो धृतिमान समः,
वदान्यो धार्मिकः शूरः,
वदान्यो धार्मिकः शूरः,
करुणो मान्यमानके। अच्छा एक बात है ना, भगवान के गुणों की चर्चा करने में कितना सुंदर लग रहा है ना, सो प्लीजिंग अनुवाद। भगवान कृष्ण स्थिर, इंद्रियों को वश में रखने वाले, क्षमाशील, गंभीर तथा शांत हैं। वे सब पर समदृष्टि रखने वाले भी हैं, साथ ही वे वदान्य, धार्मिक, शूर तथा दयालु हैं। वे सम्मानित व्यक्तियों के प्रति सदैव आदर युक्त हैं। स्थिर, देखिए स्थिरता का गुण का महत्व तभी है जब अस्थिर रहने के कारण प्रस्तुत होने के बाद भी व्यक्ति स्थिर रहे। मेक सेंस है कि नहीं? अस्थिरता के कारण उपस्थित होने के बाद भी व्यक्ति स्थिर रहे तब उसकी स्थिरता का कोई महत्व है। कोई बिल्डिंग हवा मतलब हवा से झेल सकती तो उसका महत्व तभी हो जाएगा जब जोर की आंधी आए और ना कुछ हो, और जोर की जहां आंधी है और उड़ जाए या गिर जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है कि नहीं। बोले कि ये अर्थक्वेक प्रूफ है, तो अर्थक्वेक आया और वो रह जाए तब तो माना जाएगा ना कुछ दम है, ऐसे वो नहीं आया तो कुछ कह नहीं सकते। तो स्थिरता का ये है कि बहुत बड़े कष्ट कठिनाई भी आते हैं, कष्ट तो भगवान पे नहीं आता है लेकिन भगवान उसे दिखते नहीं। जैसे आप देखिए कि ये शल्व नामक असुर ने बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित कर दी थी। शल्व नाम था ना, शल्व, शाल्व, हाँ, कोई कठिनाई नहीं, वहां ने युद्ध कर खत्म कर दिया। और इसमें भी कितने असुर असुर आते हैं, वो देखिए 23 अक्षौहिणी लेकर के युद्ध करने आता था, कितने है ना, जरासंध 23 अक्षौहिणी, मतलब इधर 18 थी टोटल और उसकी 27 अक्षौहिणी खुद की थी, और ऑलमोस्ट हर साल आता था ना, एक साल में बीन बेन के सबको टाकर ले जाता है। भगवान कृष्ण बलराम जाते थोड़े से सैनिक लेकर के, अकेले मार देते, भगवान कृष्ण बलराम का एक भी सैनिक नहीं मरता, बिना कठिनाई के मार देते। दांत तुमने पढ़ी लिया अभी, संयमित इंद्रिय वाले, अपने इंद्रियों को संयम करने वाले। दांत का अर्थ देखिए इंद्रियों पर संयम करना होता है, और दमन कहते हैं, और शम का मतलब होता है मन को संयम करना। क्षमाशील तो आप समझ गए, फॉरगिविंग, इसको आप देखिए यहां उदाहरण आ रहा है, अक्रूर जी, अक्रूर जी सत्राजित नाम था ना, सत्राजित भगवान के संबंधी ससुर है, सत्यभामा के पिता, और अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं, और अक्रूर जी ने इंस्टिगेट किया था शतधन्वा को अक्रूर सत्राजित को मारने के लिए, और मार भी दिया था उसने। और अक्रूर जी शामंतक मणि लेकर के चले गए थे बनारस काशी, फिर भी भगवान उनको डांटे नहीं, उनको चिट्ठी लिखकर के भेजे कि आप, मुझे पता है कि मणि आपके पास है, आप आ जाइए वापस, मुझे मणि की अपेक्षा नहीं, लेकिन मेरे पे ये ब्लेम लग रहा है कि मणि मैंने चुराई है, इस कारण से मैंने सता इसको प्रसेन को मरवा दिया है, और इसमें सब से बातें हैं। तो वो आए और भगवान उनको माफ कर दिए। अरे खुद अपने खास ससुर की वध में, मर्डर में कोई व्यक्ति लिप्त हो, लेकिन आपका भक्त है, तो कुछ तो दंड देना चाहिए, लेकिन भगवान कुछ दंड नहीं दिए, बहुत क्षमाशील है। भगवान ने क्या नाम है उसका, सुग्रीव से बॉन्ड था, कॉन्ट्रैक्ट था, सेवा के उनको दिए थे कि आप मेरी पत्नी को ढूंढ के लाएंगे, तो उन्हें उनका राज्य दिलवा दिया, तो तारा उनको प्राप्त हो गई, तारा का मतलब जो भी है, he was doing his things there, so, and he forgot about his service. भगवान राम डांटे नहीं, सो लक्ष्मण जी डांट रहे, डांटने काम गुरु जी का है ना, गुरु तत्व है लक्ष्मण जी, लक्ष्मण एकदम फरफरा रहे थे कि आज तो उसकी बधी कर दूंगा, भगवान राम कहे नहीं थोड़ा सा इनको बस आप समझा दीजिए ऐसे करके। यहां तक कि भगवान राम नीचे बैठे होते पेड़ के और ऊपर बंदर कूदम गादी करते, तब भी भगवान कुछ नहीं कहते, ऑब्वियसली दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट फिर भी बंदर कूद रहा है भगवान के ऊपर, भगवान को कुछ कोई गुस्सा नहीं करते भगवान से। बहुत समाचार, और समाचार का कोई गुण आपको बता रहे? हाँ, अभी देखिए पब्लिक में कोई गाली दे तो खराब तो लगता है कि नहीं, बहुत खराब लगता है, और हम लोगों का क्या सम्मान है, लेकिन हम लोगों को भी पब्लिक में कोई गाली दे दे बड़ा खराब लगता है, भूल नहीं पाता कोई व्यक्ति, बड़ा खराब लगता है एक्चुअली, ये बहुत खराब लगता है पब्लिक में कोई आपको खराब बोल देना, आपको केवल डांट दे, कोई सुपीरियर व्यक्ति भी अगर पब्लिक में डांट दे तो बहुत खराब लगता है, और कोई इन्फीरियर व्यक्ति गाली दे बहुत खराब लगता है। ये बात भागवत में उद्धव जी पूछे हैं कि भाई एक मनीषी व्यक्ति भी जो जान रहा है शरीर नहीं है आत्मा इत्यादि, उसको भी अगर कोई पब्लिक में उल्टा सीधा बोल दे उसे सहन नहीं होता, आपके भक्त कैसे सहन कर लेते हैं? इसका मतलब वाकई जो भक्त है वो सहन कर लेता है, तो कहते हैं भगवान कहते हैं क्योंकि वह मेरे कथा कीर्तन में आनंद में विभोर रहते हैं इसलिए सहन कर लेते हैं, हमसे इसलिए नहीं होता कि हम उतने विभोर नहीं है, उतने क्या बिल्कुल विभोर नहीं है, विभोर रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता, कुछ भी बोलते रहो। कौन से एक संत थे ना, नहीं नहीं अवंती ब्राह्मण तो थे एक संत, मैंने सुना कि उनको एक मतलब स्त्री या वैश्या कर लांछन लगा कि इन्होंने हमारे संग गलत काम किया है, तो ठीक है हमारे संग रहो ठीक है आप रहिए हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। बाद में उसने क्षमा मांगी कि आपने हमें हमने आपके प्रति अपराध, कंप्लीटली अलूफ, उनको कुछ सम्मान चाहिए ही नहीं ना, कौन तो थे पता नहीं, तुकाराम थे कौन तो थे, बोले ठीक है आप रहिए हमारे साथ भजन कीजिए अरे हद हो गए भाई, कोई इतना बड़ा अपमान हो जाता है ना, बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा, कोई 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 दिक्कत नहीं। या फिर श्रीवास ठाकुर को भी आप देख सकते हैं, क्षमाशीलता का एक और गुण पता है क्या है, क्षमा वो व्यक्ति करने का सामर्थ्य कहा जाएगा जो जो अहित कर सके और फिर भी क्षमा कर दे। वैसे तो क्षमा करना बहुत व्यापक है, एक स्पेशल और बोल सकते हैं भगवान, मतलब कोई अपराध किया है और उसके बदले में वह कुछ कर भी सके फिर भी क्षमा कर दे, और ये एग्जांपल बहुत अद्भुत, मतलब ये एक ही डेफिनेशन नहीं है लेकिन दिस इज वन वेरी पावरफुल डेफिनेशन. देखिए भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, कौन रोक सकता है. अरे हम लोग को सहन कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात है क्या बताइए, सॉरी कोई छोटी बात है क्या. हमारे कब से तो भगवान को हम देखा कर ही रहे हैं, क्या सी टॉलरेंस नहीं है. एक व्यक्ति जो आपसे बात भी नहीं करना चाहता है, भाई हम भगवान का नाम उच्चारण भी नहीं करना चाहते, तो मतलब ये ना वहां से बात नहीं करना चाहते, गीता सुनना भी नहीं चाहता है कोई भी बद्ध जीव, तो इसी प्रकार का है ना. और उसका पालन कब तक करता रहेगा बताओ, कौन माता पिता करता रहेगा कि लड़का बिल्कुल विमुख है, और एक नहीं अनादि काल से विमुख है फिर भी, और जो भगवान चाहते बिल्कुल उसके विपरीत कर रहा है फिर भी भगवान पालन कर रहे हैं, तो ये क्षमाशीलता नहीं बताई भगवान की. और शिशुपाल वाला तम के सुनी चुके हैं, शिशुपाल वाली बात हो रही, शिशुपाल पब्लिक में गाली बकता और 99 पे रुक जाता. अच्छा 99 पे रुक जाए तो और गुस्सा आएगा नहीं. सब बोलता तो मैं चक्र चला देता, लेकिन ये बंधन पड़ा हुआ है कि नहीं सोचेगा. वो हमेशा गिनता था कि 99 में रुक जाए, सुना हमने इसी प्रकार से 99 में रुक जाता था और खूब गाली देता था. बताओ ऐसा कोई हम पर बंधन हो कि भाई 100 बोलेगा तभी आप गोली मार सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, और हर बार 99 में रुक जाए तो और गुस्सा आएगा ना, आदमी गुस्से में चला भी दे. कि अब क्या मान देखना है इतना, चलिए अब छोड़िए क्या गिरना है, मारो उसको खत्म. और भगवान मार देते कौन रोकने वाला है बताइए. ये सोचिए आप अपने आप को भगवान के स्थान पर रख के देखो, आप सौराट हो, कोई कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, पब्लिक में गाली दी जा रही है और आप रुकने वाले हैं, एक गाली भी सहन करने वाले हैं. हम लोग तो इसीलिए किसी का मर्डर नहीं करते हैं या जो भी कुछ नहीं करते हैं कि हमें पर पुलिस पकड़ लेगी. और मान लो कोई ऐसा होता कि हम कुछ भी, कोई कुछ भी करते, मान लो औरंगजेब होता कोई कुछ भी कर नहीं कर सकता है, तब कुछ बोलेगा तो आप कुछ सहन करने वाले, छीक भी देगा कोई तो गोली मार देगा ना. मैंने सुना है कोई व्यक्ति, उसका कोई व्यक्ति था वो सो गया था उसके क्लास में, तो गोली मारती थी या कुछ ऐसे कर दिया. नहीं भागवत क्लास की बात नहीं कर रहा है. कोई एक है उसका नाम या स्मरण नहीं कहा ना नॉर्थ, ठीक है यू अंडरस्टूड, सुना हमने इस प्रकार से. तो भगवान के अंदर सारा सामर्थ्य है फिर भी क्षमाशीलता बहुत बड़ा गुण. और कोई रेम्बरेंस जगाई मदाई का तो है ही नहीं, भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहा क्षमाशीलता. इंद्र इंद्र भरे, इंद्र का सोचिए, इंद्र तो मतलब अपराध की ना हाईएस्ट लिमिट कर दी. ब्रज के सभी गवों को मारना चाहते थे ब्रजवासी, अर्थात श्रीमती राधा रानी, नंद महाराज, यशोदा मैया, जो सारे सखा, उन सबको मारना चाहते थे. मारने का दम नहीं था लेकिन मारना तो चाहते थे ना. संकल्प कितना घोर था बताइए. तो आदमी मुझे बोल रहा हूं तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सुनने में कितना भारी लग रहा होगा. और वो संकल्प करके पूरा प्रयास करके मारे, फिर भी कृष्ण को क्षमा कर दिए,
जल्दी बहुत जल्दी क्षमा कर दिए, ऐसा श्लोक में क्षमा कर
दिए. वैसे उसका कारण ये भी था कि 7 दिन तक सबको
साथ में
रखा उन्हें, लेकिन फिर भी संकल्प बहुत घोर था. इसका अर्थ ये नहीं कि हम लिबर्टी ले, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि देखिए माया कैन एक्सप्लॉइट अवर फ्री विल बट शी कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस. ये बात एक भक्त को समझनी होगी. देखिए अनर्थ निवृत्ति में इंद्रिय तृप्ति के द्वारा दब जाना ये स्वाभाविक है और सबके संग होता है. ऐसा नहीं कि मेरे संग होता है या आपके संग होता है, सबकी अलग अलग गाजर है इसे कहना चाहिए. वो गाजर आती तो कभी कभी लोग गाजर खा लेते हैं. हमारे वो करुणा मित्रों का कान पक रहा है, क्यों पक रहा है, चावल खा रहे, चावल मत खाओ. हाँ लेकिन चावल खाने की प्रवृत्ति है तो चावल खा रहे और कान पका रहे, जान रहे हैं ना, जानी है सुनिए विषय खाने वाली स्थिति है. तो भक्त का ये भावना रहती कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इंद्रिय तृप्ति में पड़ जाऊं, चाहे कुछ भी हो, कृष्ण की सेवा करना मैं नहीं छोड़ूंगा. कृष्ण हमेशा हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है. इट डजंट मीन दैट वी बिकम डिबॉचीज एंड बिकम रॉन्ग डिवोटीज, बट ये समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारे महाराज बड़ा अच्छा बोलते थे, प्योर लव, ट्रू लव मीन्स अनलिमिटेड फॉरगिवनेस. तो भगवान जीवों को सहज रूप से प्रेम करते हैं, क्षमाशील है, बहुत अच्छा गुण भगवान का है. गंभीर, गंभीर शब्द बड़ा अच्छा है, पता है गंभीर का मतलब क्या है, वो क्या सोच रहे हैं यह नहीं समझ सकता कोई. भगवान चुपचाप बैठे, आप भगवान के सामने जाते हो और मुस्कुराते रहते हैं, आपको कि मैं इतना परेशानी में फिर भी मुस्कुरा रहे अब वो क्या सोच रहे हैं. अब वैसे तो हमेशा हित ही सोचते हैं, भक्तानाम शम अभिप्सितः, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में भक्त के संग क्या हो रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है भक्त के लिए. लेकिन सच्चा भक्त देखिए भगवान की, ट्रू डिवोटी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ द लॉर्ड बट ही एक्सेप्ट द विल ऑफ द लॉर्ड. परीक्षित महाराज को ऐसे महान भक्त को अकस्मात एक हफ्ते का नोटिस मिल जाना कि भाई तुम मर जाओगे बिना किसी गलती के, अब क्या समझेंगे, तो गंभीर बात है। अच्छा, चित्रकेतु महाराज का भी पता है ना आपको, चित्रकेतु महाराज को जब श्राप मिलता है उसके पीछे भगवान ही कारण थे कि यही भक्त को मुझे जल्दी अपने पास वापस लेके आना है। तो जो एकदम से सोचे चित्रकेतु महाराज सीधे वृत्रासुर बन गए, ये बहुत बड़ा डिमोशन है एक तरह से देखा जाए। हम लोग वृंदावन में रह रहे, कोई मान लो बहुत से भक्ति कर रहा है और एकदम से बिल्कुल शराबियों के संग में जाके गिर जाए तो बहुत बड़ा दुख लगेगा ना, कोई संग नहीं, कुछ नहीं। इंद्रदुम्न महाराज हाँ वो बन गए, हाथी बन गए। तो देखिए इस ये हमारे लिए समझना मुश्किल होता है कि क्यों भगवान हमारे जीवन में कष्ट ला रहे हैं। क्यों तो यही है कि कुछ आगे अच्छा कराना चाहते हैं, लेकिन अब ये समझ में नहीं आता है भक्तों की ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ये समझना मुश्किल है, असंभव भी है। कि आपको याद है भीष्म कहते हैं कि कब क्या था, मुह्यंती कवयोपि ही, कोई कहे कि अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान का आशय क्या है, तो समझने का प्रयास तो करना चाहिए। कहते हैं ना, जो प्रयास करते हैं तो कविजन भी मोहित हो जाते हैं, और उससे भी मजेदार था कि अरे आप कह रहे हो कि इनका आशय क्या है, नहीं समझ में आ रहा, तो सामने खड़े हैं इनसे पूछ लेना चाहिए। तो कह नहीं ये माया करेंगे फिर से, अरे मैं क्या इतना बुद्धिमान हूँ जो जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ मैं, ऐसे करके टाल देंगे और नहीं बताएंगे क्या करना चाहते हैं। और मान लो बता भी दे तो भी समझ में ना आएगा। तो ये बड़ा सुंदर है। जैसे मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि मेरा आईआईटी में फर्स्ट बार में नहीं हुआ, रो रहा था, दूसरी बार में हो गया, तब मुझे पता था कि भगवान किस प्रकार से साउथ इंडिया में जाके मुझे भक्तों के संग लेके आएंगे। जिसने कभी, मतलब मैं अपनी बात करूं, कभी मैंने पूजा नहीं करी, कोई पूजा किसी, ऐसे खड़ा हो जाने का मतलब था नहीं होता, श्रद्धा होता है। घर में पूजा हो रही, दिवाली में जाके खड़े हो गए, इसको आप कुछ किसी देवता के बारे में कभी नहीं सोचा, बताइए। और ये भी आश्चर्य हो रहा है मुझे, 2002 में मैं अपने फूफा जी के यहाँ गया था बॉम्बे में, तो उनके शेल्फ से भगवत गीता यथारूप निकाली, ऐसे खोला, समझ में नहीं आ रही है, बंद कर दी और फिर वापस वहीं रख दी। एंड देन वी वेंट टू द जुहू बीच, उन्होंने कहा चलो मंदिर में लेके चलते हैं, कि क्या मंदिर में क्या जाएंगे, नहीं गए। तो बड़ा, बस इतना मेरे को विश्वास है कि हमको भक्ति हर परिस्थिति में, एवरी मॉर्निंग शुड बी फॉर कृष्णा इवन इफ द नाइट हैज बीन फॉर माया, ऐसा कहा जाए। मतलब दिन में माया में गए हों या कुछ भी परेशानी में गए हों, लेकिन सुबह तो कृष्ण की सेवा में जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं नाइट माया के लिए जाना चाहिए, खाली कहने का मतलब कि नाइट हो या डे हो, चाहे कितना हो माया में गिर जाए व्यक्ति, भगवान की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान, आप सोचते नहीं कि भगवान हमारे हृदय सारी भोग की इच्छा तुरंत क्यों नहीं समाप्त कर सकते, क्या सामर्थ्य नहीं है हमें, बताइए। क्या ऐसा नहीं कि आप कल शुद्ध भक्त बन जाएंगे, बिल्कुल बन सकते हैं, और हो भी सकता है और हुआ भी है लोगों के साथ। आप कल को ही वैकुंठ पहुंच जाओगे, ओके नहीं प्रभु जी गोलोक चाहिए, अरे ठीक है कहीं भी चाहिए, आप चाहे एक क्षण में पहुंच सकते हैं, एक क्षण में। कृष्ण को आप देखो, आप वो मत चैलेंज मत करो, कृष्ण नहीं तो हमको गोलोक नहीं लेके आ सकते, ऐसा नहीं है, एक क्षण में कृष्ण कर सकते हैं। लेकिन क्यों संघर्ष करवा रहे, उनको अच्छा लगता है भक्त लगे रहे, क्या कर सकते। आपके मन में आता नहीं कभी एक ही नाम में अनंत शक्ति सब कुछ खत्म करते हैं, जब न भाई अगर नम्रता आ जाएगी हृदय में तो आप कहीं का अपराध करेंगे नहीं, लेकिन भगवान नम्रता भी तुरंत नहीं दे रहे कि तो नम्रता ही आ जाए, है ना। बात तो है, हरिदास ठाकुर जी की तरह नम्रता आ जाए, टेस्ट आ जाए, तो आपको झगड़ा ही नहीं, ना इंद्रिय तृप्ति ना कुछ कुछ भी नहीं। तो भगवान ने इस बात को बोलते हैं, कि जिस तरह से जितनी मात्रा में चक्षुर छयवान जिस संप्रीत, बहुत सुंदर श्लोक था, अभी मन से हट रहा है, यादृशी यादृशी याद आ रहा है, जबकि श्लोक इस तरह से यादृशी नहीं है। जितनी मात्रा में जीव मेरे श्रवण के मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर यथैवान जस संप्रयुक्तम यथा यथात्मा परिमृजते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर यथैवान जस संप्रयुक्तम। जितनी मात्रा में जीव मेरे श्रवण कीर्तन से शुद्ध हो जाता है, उतनी मात्रा में मेरे माधुर्य का अनुभव करने में समर्थ हो जाता हो पाता है। जिस प्रकार से आंखों में अंजल लगाने से क्रमशः आंखों की ज्योति आती है, तो आप समझ गए भगवान का गंभीर आशय, चाहे तो तुरंत शुद्ध कर दें, लेकिन चाहते हैं कि भगवान के भक्त लगे रहे, अभ्यास करते रहते, धीरे धीरे करके भगवान शुद्ध करते हैं। समझ में आए, ठीक है। धृति, धृतिमान और समा, धृतिमान का मतलब है शांत, जो कभी बुद्धि ही नहीं होती। इसका अर्थ क्या है, देखिए कोई कठिनाई आने पर सबसे पहले क्या होता है, बुद्धि बंद हो जाती है, जैसे कहा जाता है बुद्धि पे बल पड़ जाते हैं, सुना है आपने? ऐसा कोई समय नहीं है जब भगवान की बुद्धि पे कभी बल पड़ गया। तो कहेंगे नहीं, जब अघासुर के पेट में उनके मित्र चले गए थे तब भगवान सोचने लग गए थे। नहीं, यह केवल भगवान की लीला शक्ति के कारण ऐसा है। सत्वतः भगवान कभी ऐसा भ्रमित नहीं होते। या शल्व ने जिस प्रकार से माया रची थी कि उनके सामने लेके आया और कहा कि देखो वसुदेव जी के गर्दन काट रहा हूं मैं, और काट देता, तो भगवान कुछ समय के लिए सोचने लग जाता है अरे मेरे पिता मर गए ऐसे करके। लेकिन वो सब जो है भगवान की लीला है, लीला के आवेश में होना ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि भगवान को कभी भी बुद्धिहीनता हो जाए। भगवान कभी बुद्धिहीन हो नहीं, सबको बुद्धि देने वाले तो वही है। और समहकार समझते ही है सभी के प्रति सम, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं। क्या है? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय। तो भगवान तो स्वयं बोल रहे हैं किसी से द्वेष होने कारण क्या होता है बताइए? हमारे इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति बाधा डालता है तो हम द्वेष करते हैं, और जो हमें इंद्रिय तृप्ति देता है उससे हम प्रेम करते हैं। तो भगवान के लिए इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावना है ही नहीं, वो तो आत्मराम है। हाँ, वो अलग बात है कि वो स्तन्य काम भी हो जाते हैं, लेकिन वो प्रेम के कारण होता है। भाई उनको दूध नहीं मिलता, देखो इंद्रिय तृप्ति नहीं दे तो भगवान शांत रहते हैं, लेकिन अगर दूध नहीं दे तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं। तो खैर वो एक अलग बात है, वो तो प्रेम के कारण है। माता यशोदा उस प्रकार से करती है, अलग चीज है। सभी सर्व दोनों गुण भी है भगवान में। वदान्य, वदान्य का अर्थ क्या था? मैग्नानिमस। कोई पास्ट टाइम याद आ रहा है? जगाई मताई तो खैर है ही, मैं खाली महाप्रभु तो है ही, मैं कृष्ण के बारे में सोचता। कृष्ण स्वरूप में जब भगवान आते हैं, कुब्जा बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। कुब्जा ने भगवान को चंदन अर्पित किया और भगवान उसको ऐसे पकड़ के अस्कया कहते हैं सर्जरी, उसकी पीठ खुलवा दिए। अगर कहा जाए उसकी पीठ की सर्जरी कर दी। बेचारी कुब्जा थी और पीठ कुबड़ी कुबड़ी थी, और कुबड़ी भी थी और बसूरत भी थी। तो नहीं, सुंदर थी लेकिन कुबड़ी थी। तो भगवान उसको एकदम बस सीधा कर दिए, ऐसे खाली यहां पकड़े और सीधा कर दिए, सब उसकी पीठ सीधी हो गई, बहुत सुंदरी हो गई। तो ये भगवान की वदान्यता है। और कहीं कुछ स्मरण आ रहा है? धोबी को तो भगवान मार दिए थे, सुदामा ब्राह्मण भी हम जानते हैं, ब्राह्मण को भी दिए थे भगवान, एक्चुअली बहुत दिए, महल का महल दे दिया, केवल थोड़ा सा चावल दिया। और हाँ, एक सुदामा माली था, यस, वो भी कृष्ण बलराम गए और उसने भगवान को माली दी, माला, कृष्ण बलराम जी के लिए माला दिया। तो भगवान कहे कि तुम जीवन में पूरा सुखी रहोगे और अंत में तुम मेरे पास आओगे। देखिए वस्तु भगवान के पास असीमित है देने के लिए, और कंजड़ नहीं है भगवान। कंजड़ समझते हैं, इतना दिया है और नहीं दूंगा, कल तो आया था मांगने के लिए, अभी क्यों आ गया फिर से। कंजड़ पना समझते, कंजड़ पना ही कंजड़ पना होता है। कभी कभी लोगों के पास होता भी, फिर भी कंजड़ पना करते, देते नहीं है। लेकिन भगवान के पास अथाह है, अथाह भी है, अथाह ही सब कहेंगे, अनलिमिटेड, और मतलब देने की इच्छा भी है। दे ही रहे, सूर्य का बिल थोड़ा भेज रहे, पानी का बिल थोड़ा भेज रहे, आरओ फैक्ट्री लगा रखी है ना गंगा जी के रूप में, फ्री बांट रहे। यहां तक कि उनके पानी को पैकेज करके लोग बेच रहे हैं और उनको कुछ नहीं दे रहे है कि नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। आरओ पानी मान लो को मैन्युफैक्चर करे, दूसरा आदमी बेच दे चोरा चुरा करके, तो केस कर देगा। यहाँ पानी सब ला ला के बेच रहे हैं, लेकिन भगवान को तो कोई 5 रुपए भी नहीं दे रहा उसका। अरे यह भी नहीं स्वीकार कर रहा कि भगवान का है। ठीक है, धर्म का तो स्पष्ट है, भगवान धर्म के ही पथ पर चलते। मूर्तिमान धर्म क्या है? भागवत का प्रथम श्लोक का प्रथम अध्याय का आखिरी श्लोक, धर्मण्ये वर्मणि करके, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्म की कवचवत रक्षा करने वाले हैं। श्लोक है आखिरी श्लोक, हाँ आखिरी श्लोक तो है कि जब कृष्ण चले गए अपने, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, उसी के आगे पीछे वाला श्लोक था कि जो भगवान धर्म की रक्षा कर रहे थे, कवचवत रक्षा कर रहे थे। तो वो भगवान के चले जाने बाद धर्म की शरण किसने लिए, धर्म ने किसकी शरण ली है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूं। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि भगवान को पता है कि धर्म क्या है, नहीं तो ये कैसे मालूम चले कि धर्म की ग्लानी हो रही है? ये सोचने वाली बात है ना। तो कभी कभी कहते हैं भगवान अब क्यों नहीं आ रहे? अरे आप पूछ के आएंगे, आज कल हमको ऐसे ईश्वर की जरूरत नहीं है जो बांसुरी बजाए, ऐसा ईश्वर चाहिए जो चक्र चलाए। कब तेरी गर्दन में चल गया तो कहोगे अच्छा है भगवान, बांसुरी बजाए तो ठीक रहता, तो भगवान धार्मिक है, धर्म का खूब अच्छे से जानते हैं और धर्म का उपदेश भी अच्छे से करते हैं, धर्म का पालन भी अच्छे से करते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण उदाहरण आ रहा है भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या, प्रतिदिन की दिनचर्या में देखेंगे कि बड़ा स्पष्ट लिखा है कि रुक्मणी उनको आलिंगन करके लेटे रहना चाहती थी। सुबह का समय हो गया, कृष्ण रुक्मणी जैसी पत्नी को त्याग करके उठ गया। यहाँ पे एनीवेज, तो वहां पर बात कह रहे हैं बड़ा स्पष्ट कि भगवान यहाँ सूचित कर रहे हैं कि भले ही कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की आलिंगन में रहे, लेकिन फिर भी उसको सुबह ब्रह्महूर्त में आध्यात्मिक कल्टीवेशन के लिए उठना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान ने भी तो शादी करी है तो वो भी कर सकते, तो हाँ शादी तो करी है लेकिन फिर नियम भी पालन किए हैं। दान देते थे, गायों की को देखते थे, गायों की सेवा करते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, बस खाली शादी करोगे भगवान के और जो नियम पालन वो नहीं करोगे। क्या कहेंगे, ठीक है भगवान आप ही करिए। जो भगवान जिस प्रकार से गृहस्थ जीवन का पालन करते थे कोई छू भी नहीं सकता। तो ये सब चीजें हैं, तो बहुत अच्छा है धर्म का पालन करता। भगवान खुद इस बात को बोलते हैं कि यदि मैं यदि वर्तेयम जातु अतंद्रता करके, मैं थोड़ा सा भी धर्म के पथ पे नहीं चलता हूं, यद्यपि मुझको धर्म पे चलने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा भी धर्म के पथ पे नहीं चलता हूं, तो उससे समाज में बहुत बड़ा उपद्रव उपस्थित हो जाएगा। हाँ मेरे ही चीज को पालन करेंगे, जैसे भाई वही राशि वाला तो करने लग जाते हैं इस प्रकार से धार्मिक। हाँ, ये भी है, धर्मम तो साक्षात, धर्म साक्षात भगवान के द्वारा ही प्रणीत किया जाता है। धर्म मूर्तिमान धर्म है भगवान, ठीक है। शूर, शूर का मतलब है शौर्य, वीर। ये काफी इंटरेस्टिंग, फिर जरासंध के एपिसोड में आ जाइए, जरासंध 23 अक्षौहिणी लेके आता था और भगवान कुछ सैनिक लेकर के भगवान कृष्ण बलराम आ जाते थे युद्ध करने के लिए। कितनी क्षमता है उनकी, 23 अक्षौहिणी, मतलब पक्के पहलवान, एक से एक युद्ध करने वाले है ना, और उनसे बस दो तीन लोग और कुछ लोग मिलकर के। अच्छा इधर आ जाइए रुक्मणी जी के, उसमें शिशुपाल और जरासंध की पूरी पलटन आई हुई है, भगवान अकेले चले गए हरण करने के लिए। ये वीरता है कि नहीं बताइए, क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा भाई, आ जा। अच्छा वो सत्या को जीतने के लिए 7 सांड थे ना कि 9 थे, बैल नहीं थे सांड था, बैल बैल नहीं थे सांड थे, सांड और बैल में अंतर पता है ना आपको, हाँ सांड थे, तो सांड थे वो बहुत, और सांड ज्यादा खूंखार होता है, देखिए आवाज आई ना खोकर, पहले एक ही तो पूरा होने दीजिए। तो सातों को भगवान नाथ दिए बदम, जहां छोटे बच्चे की तरह बांध के खत्म कर दी, तो ये वीरता है ना। बाकी तो एक से ही हार के पीट के किसी को मर भी जाते थे बहुत से राजकुमार, भगवान की वीरता है। और कहां भगवान की वीरता है, इधर नहीं कंस तो है ही, उधर क्या नाम से कंस के इसमें भी गए एकदम, कंस कृष्ण बलराम जी एकदम सीना चौड़ा करके जा रहे हैं, कोल्या पीठ को मार दिए, और जो कंस, अच्छा कंस कितना शक्तिशाली था और उसके ही खेमे में जाकर के उसको मार दिया, ये वीरता नहीं है एकदम। और ऐसा ऐसा मारा से कीड़ा होता, खट से मार, देखा था ये सोचने वाली बात है, कंस कोई नहीं मार पा रहा था, भगवान ऊपर से उतारे नीचे पटका वही मर गया वो। और एक वीरता का उदाहरण है ये सत्यभामा को लेकर के, जब नरकासुर को मारने गए केवल अकेले, वहां तो केवल अकेले गरुड़ जी भगवान कृष्ण और पत्नी, अरे पत्नी को ले जाना तो और दिक्कत है, हाँ उसको प्रोटेक्शन करें या पत्नी करें, अरे अरे आप क्या कर रहे हैं, ये तो तीन मार देगा ये जो भी है, चीखने लग जाए। खैर ऐसे सत्यभामा नहीं है, वो सत्यनारायणी है, मैं सुना उसमें मदद भी करती है कुछ ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है तो भगवान अकेले ही सब खत्म करती है, सारा ही सब चक्र चला के खत्म करती है। हाँ और कहाँ पे याद आ रहा है, वीरता तो भगवान करते ही है, बल्कि कौन से असुर से डरे हैं भगवान, सब ऐसे मार दिए, केशी बकासुर पूतना सबको भगवान मार दिए। चलिए करुणा, करुणा का सबसे पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं पूतना पे, है कि नहीं, इनसे बड़ा करुणावान कौन है कि जो वदान्य भी इसी में आ जाएगा, वदान्य कह लीजिए करुणा कह लीजिए, करुणा का अर्थ एक्चुअली क्या, नहीं करुणा का आप ना कृपा भगवान की करुणा का देखिए मूल अर्थ होता है दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाना, करुणा नहीं मौत। देखिए जीवों पे तो सहज रूप से भगवान करुणा कर ही रहे, हम थोड़ा ना भगवान को बुलाने जाते हैं, भगवान फिर बारंबार आते हैं बिना मांगे दे रहे हैं, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है कि करुणा का एग्जाम्पल कहाँ पे आ रहा है भगवान के। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि जितने असुरों को मारते हैं भगवान चले गए, तो चलो तुम बहुत परेशान कर रहे हो, चलो तो हमारे घर में जाके रहो। महाराज बड़े अच्छे से बोलते हैं, मान लो कोई व्यक्ति हो और किसी गुंडे को दो थप्पड़ मारे, कहे तुम बहुत परेशान कर रहे हो, यहाँ डिस्टर्ब करो, चलो हमारे लिए हमें घर बनाया हुआ, वहां जाके रहो। तो यही तो भगवान कर रहे हैं ना, जितनी सबसे पहले तो गुंडी को धार के, गुंडी पुतला, उसके भाई बकासुर और सबको मार मार करके कहते चलो जाओ जाओ मेरे धाम में रहो, ऐसे करके। तो ये भी भगवान की विशेष करुणा है। हाँ, यहाँ पे भी अब कृपा उदित हो जाती है भगवान की, जब माता यशोदा उनको प्रयास में कर रही होती बांधने का। लेकिन जनरली मैं सोच रहा हूँ किसी भी दुख को निवृत्त करने की बात थी। हाँ, एक चीज है, वो जो 10,000 राजा थे जिनको जरासंध बांदी बना लिया था, तो उन पे भगवान दया करके उनका उद्धार किए थे। ये एक बड़ा प्रत्यक्ष है करुणा का एग्जाम्पल। रानिया को पकड़ लिए थे, 16,000 रानी, 16,100 रानियों को पकड़ लिए थे। तो भगवान देखो, बात ही था कि उसने बड़ा सुर ने उनको स्पर्श कर लिया था, तो यानी कि कोई उनको स्वीकार करने वाला नहीं था, और भगवान ने उनको क्या था, अपेश कल्मषम का कुछ था शब्द के, उनका पवित्रता एक तरह से नष्ट हो गई थी। मतलब उनको स्पर्श कर, पहले जमाने में स्पर्श करने मात्र से कोई स्वीकार नहीं करता। तो ऐसे असुर ने, नरकासुर नाम था ना, नरकासुर नाम, हाँ नरकासुर ने इस प्रकार से कई काफी समय तक, मतलब तो 1 साल या कितने समय तक उसने जिनको बंदी बना के रखा था, तो उनसे कोई शादी नहीं करने वाला था। तो भगवान होकर मतलब भगवान ने स्वीकार कर लिया, सोचो उनको भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य भगवान ने दिया, तो ये तो करना ही है ना भगवान की। मान्य मान कृत, ये बहुत सुंदर है, जो सम्माननीय जन है उनका सम्मान सम्मान करते हैं। अभी आपने देखा था कुछ दिनों पहले कि भगवान जब द्वारका में आते हैं, तो अक्रूर जी हैं, उग्रसेन हैं, भगवान सॉरी वसुदेव जी हैं, उन सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान, लेकिन दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। चाहे उधर आ जाइए राजसूय यज्ञ में, हैं भगवान, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में सबके चरण धोने का की सेवा कर रहे हैं, चरण धोने की सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और हाँ, एक और, अपने गुरु जी उन संदीपनी मुनि के लिए कितना भगवान ने कष्ट उठाया, तो सम्मान देना हुआ ना गुरु जी को। और क्या था,
पांडव पूरा
नहीं, मन ने मान कृत में होगा, जो सम्माननीय व्यक्ति हो, तो उनके साथ वाले है ना, युधिष्ठिर महाराज को भी सम्मान करते थे, उनको बड़ा भाइया बोलते थे। और कहाँ पे आ रहा है, भीष्म पितामह से किंतु भक्त वात्सल वाला भाई सम्मान तो करते थे, और कहीं आ रहा है स्मरण में, तो इससे भगवान कृष्ण के गुण है। नंद बाबा के तो चप्पल भी उठा देते हैं कृष्ण, खड़ा उठा करके भी सामने जाते थे। और अभी तो भगवान के कहीं और मन ने मानो आधार है। तो इस प्रकार से मान, एक्चुअली मन ने नहीं, मान ने मान कृत है, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए उनको सम्मान कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, और भगवान कृष्ण की गुणों की चर्चा आगे करेंगे। इन गुणों पे कुछ विचार आप कर सकते हैं, जो भी गुण आपको अच्छा लगे, कैन थिंक अबाउट इट। देखिए, ऐसे तो हम लोग पढ़कर आगे निकल जाते हैं, जस्ट ट्राइंग टू रिमेम्बर कृष्णस क्वालिटीज, सो लाइक दैट। तो ये सब भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए प्रेरित करते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए व्यक्ति प्रेरित। देखिए, भगवान के गुणों को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दुर्गुण तो हमको बहुत दिख रहे हैं, लेकिन भगवान के गुण देख करके व्यक्ति भगवान की ओर आकृष्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक्मिणी माता भी भगवान के गुण सुनकर के उनके प्रति आकृष्ट हुई, ऐसे तो नित्य प्रिय सी हैं, लेकिन कितना जितना कृष्ण के गुणों को सुनेगा व्यक्ति, उतना ही उनकी सेवा करने की इच्छा होगी। और ये कोई विशेष कृष्ण पे नहीं है, यहाँ पे भी आप कोई वस्तु खरीदते हो तो उसके गुण नहीं देखते हो, बाय द टाइम यू आर रीचिंग द रिव्यूज या जो भी कुछ इसमें ये गुण है वो गुण है, आप डिसाइड कर लिया कि अब इसको हम आप खरीदेंगे, स्वीकार करेंगे बेसिकली। उसी तरह यहाँ पे भी, जब से गुण ना भी हो लेकिन शादी के पहले लिख दिया था ये करेगी वो करेगी, खून तो पिएगी आपका, लेकिन बाकी वो नहीं लिखते। वो पोस्ट स्क्रिप्ट में रहता है कि भाई खून पीती है, मतलब खून, हाँ वंशी ने भी किया, मतलब एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खून पिएगी, या लड़के में नहीं लिखेंगे भैया ऐसे, तो मतलब ऐसे कोई हिस्सा नहीं, लेकिन कभी कभी हफ्ते 2 दिन में शराब और हफ्ते से पी लेता है, वो बात है तो छुपा देते कि नहीं, और गुण ही गुण लिख दिए जाते, जबकि कोई वो गुण होगा भी नहीं शायद कभी, तो लोग आकर्षित होकर शादी कर देते हैं, फिर उसका धोखा खाते हैं। लेकिन भगवान का एक एक गुण सत्य है। अरे गुण पूरा क्या बोलेंगे, क्या गुणात्मनस्ते भी गुणान वि मातुम हितावतीर्णस्य, ऐसे कृष्णों के भागवत में 14वें अध्याय का, कि आपके गुणों का आख्यान करेगा कोई, क्या मान लो पृथ्वी को बेल करके, पतला करके पेपर बनाते हैं, और क्या था, सारे समुद्रों के से ऐसा कुछ, मतलब इंक बना कुछ करते हैं, इंक बना दें और इंक से लिखना चालू कर दें उस पे भगवान के गुणों को, फिर भी भगवान के गुणों को नहीं पूरा किया जा सकता
तो
है ना। वो एक अलग है, वो बोल रहे हैं कि कोई मान लो पृथ्वी के सारे कणों को गिन ले और हिम कणों को गिन ले, या प्रकाश में जितने, सूर्य के प्रकाश में जितने कण है उसको गिन ले, तो भी कृष्ण के गुणों को नहीं गिन सकते। हाँ, एक और विशेष बात यह है कि भगवान कृष्ण के अनंत गुण और हर गुण एक जीव को विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए। अभी तो हमको क्लियर, अभी तो सारे गुण सुन रहे हैं, लेकिन भगवान एक गुण विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं एक विशेष जीव के लिए। अनंत जीव है, अनंत गुण है, कितने, एक लाइक सिम यू नो, समथिंग लाइक, यूनिक सिम और समथिंग लाइक दैट। सो कृष्ण इज अमेजिंग। सो वी शैल स्टॉप हियर, आई विल डिस्कस कृष्ण बिलिंग टुमारो। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण विद अनलिमिटेड क्वालिटीज की जय, हरे कृष्ण।